ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरहे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्ठ किम्। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद आठवा और अध्याय तेरह और श्लोक संख्या है ग्यारह आपके सामने लिखे हुए है। अष्टमे अंतरे आयाते सावरणी भविता मनो निर्मोका विरजस्का आद्याः सर्वाणि तनयः नीप। अष्टमे अंतर आयाते अष्टमे अंतर आयाते सावरणे भविता मनो सावरणे भविता मनो निर्मोक विरजस्कंधा निर्मोक विरजस्कंधा सावरणे तनया निपहा सावरणे तनया निपहा। अष्टमे अंतर आयाते सावरणे भविता मनो निर्मोक विरस्कंध्या सावरणे तनया निपहा। अष्टमे अंतर आयाते सावरणे भविता मनो निर्मोह कविरस्काध्या सावरणे तनया निप। अष्टमे अंतर आयाते निर्मोह कविरस्काध्या सावरणे तनया निप। अष्टमे अंतरायाते सावरणे भविता मनो निर्मोह कविरस्काध्या सावरणे तनया निप। मनो निर्मोह कविरस्काध्या सावर्णे तनया निप अष्टमे अंतरायाते निर्मो कविरस्काद्या सावर्णे तनया निप माता मैं को बोलेंगे अष्टमे आठवे अंतरे मनमंत्र में आयाते आने पर सावरणी सावरणी भविता हो जाएगा मनोहो आठवा मनो निर्मोक निर्मोक विरजस्काध्या विरजस्कत इत्यादि सावरणी सावरणी के तनया पुत्र नीपा हे राजा। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदान स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा इस प्रकार है। हे राजन, आठवें मनु की कालावधि आने पर सावरणी मनु बनेगा, निर्मोक विरस्कद इत्यादि उनके पुत्र हो गए। तात्पर्य, इस समय वेवस्वत मनु का शासन है। ज्योतिष गणना के अनुसार हम वेवस्वत मनु के 28वें युग में है। प्रत्येक मनु 71 युगों तक रहता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनु शासन चलाते हैं। इस समय हम सातवें मनु वेवस्वत के युग में है और आठवां मनु लाखों वर्ष बाद आएगा। लेकिन सुखदेव मुनि ने अधिकारियों से सुन रखा था, जिसके आधार पर वे भविष्यवाणी करते हैं कि आठवां मनु सावरणी होगा और उनके पुत्रों में निर्मोक तथा विरजस्कद होंगे। शास्त्र यह बता सकते हैं कि लाखों वर्ष बाद क्या होगा। ओम यज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुदा पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सरितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लीला सुकोशो विषभानुजाया पवित्र संचो प्रिय चुंबनेन एकांति नो नान्य रहस्य पाठी गोलो प्रसाद सदा निवासी। हरे कृष्णा। तो आज प्रातः श्रीमद् भागवत में आए हुए सब भक्तों का स्वागत है। तो श्रीमद् भागवत के आठवें स्कंद की सुंदर लीला का यहां पर निरूपण हो रहा है। अपने यहाँ पर आगे जो भगवान शिव जी भगवान के मोहिनी रूप में जो मोहित हो गए थे, इस लीला आपने सुने। अभी इस अध्याय नया चालू होते हैं, जो अध्याय का शीर्षक है भावी मनो का वर्णन। भावी जो मनु है इस अध्याय में वर्णन हो रहा है। तो प्रभुपाद ने पहला श्लोक से दसवें श्लोक तक केवल प्रभुपाद ने अनुवाय किए हैं, तो मैं श्लोक और अनुवाय का यहां पर जो बोल रहा हूं, बाद में ग्यारहवें श्लोक की हम चर्चा करेंगे। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी कह रहे, श्री सुक उवाच, मनो विवस्वत पुत्र श्राद्धदेव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यस दपयाति मैं श्रृणु हूं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा वर्तमान मनु का नाम श्राद्धदेव है और वे सूर्यलोक के प्रधान देवता विवस्वान के पुत्र है। श्राद्धदेव सातवें मनु है। अब मैं उनके पुत्रों का वर्णन करता हूं, कृपा करके मुझसे सुने। इस्वाकु नभक चेव दृष्ट सर्याति एव च नरेष्यन्तोथ नाभाग सप्तमो दृष्ट उच्यते तरुषस्य पृषद्धस्य दशमो वसुमान स्मितः मनोवेवस्वते एते दश पुत्रा परन्तपः। हे राजा परीक्षित, मनु के दस पुत्र में प्रथम छ इस्वाकु नभग दृष्ट सर्याति नरिष्यत तथा नाभाग है। सातवां पुत्र दृष्ट नाम के जाना जाता है। फिर तरुष तथा पृषद्र के नाम आते हैं और दसवां पुत्र वसुमान कहलाता है। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवा मरुद्गणा अश्विना विषवो राजन इंद्र ते शाम पुरंदर। हे राजन, इस मन्वंतर में आदित्य वसु रुद्र विश्वदेवा मरुद्गण दोनों भाई अश्विन कुमार तथा ऋभु देवता है। इसका प्रधान राजा इंद्र पुरंदर है। कश्यपो अत्रि वशिष्ठ च विश्वामित्रो अथ गौतम जमद अग्नि भरद्वाज इति सप्तश स्मिताः। कश्यप अत्रि वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम जमद अग्नि तथा भरद्वाज सप्त ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। अत्रापि भगवन जन्म कस्यात्पाददिते भूता आदित्यानाम वरजो विष्णु वामन रूपधिक। इस मन्वंतर में भगवान आदित्यों में सबसे छोटे वामन के नाम से अवतरित हुए। उनके पिता कश्यप तथा माता अदिति थी। संक्षेपतो मयोक्तानि सप्त मन्वंतराणि ते भविष्याणि अथ वक्ष्यामि विष्णु शक्त्यावितानि च। मैंने तुमसे संक्षेप में सात मनों की स्थिति बतला दी। अब मैं भगवान विष्णु के अवतारों सहित भावी मनों का वर्णन करूंगा। विवस्वस्ते द्वेजाते विश्वकर्म सुते उभे संज्ञा छाया स राजेन्द्र ए प्रागभिहिते तव। हे राजन, मैं तुमसे पहले ही छठे स्कंद में विश्वकर्मा की दो पुत्रियों का वर्णन कर चुका हूँ, जिनके नाम संज्ञा तथा छाया थे, जो विवस्वान की प्रथम दो पत्नियां थी। तृतीया वडमावे के तासा संज्ञा सुताश्रय यमो यमी श्राद्ध देवस्य सायास सुताश्रुणु। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यदेव के एक तीसरी पत्नी भी थी जिसका नाम वडवा था। इन तीनों पत्नियों से संज्ञा के तीन संतान हुए, यमी तथा श्राद्ध देव। अब मैं छाया के संतानों का वर्णन करता हूँ। सावरणी सपति कन्या भार्या सवनस्या सने सौर स्थिति यो भूद अश्विनो वडमात्मजो। छाया के एक पुत्र सावरणी तथा तप्ती नाम की एक पुत्री थी जो बाद में राजा सवर्ण की पत्नी बनी। छाया की तीसरी संतान सनेश्वर सनी कहलाए। वड़वा ने दो पुत्र का जन्म दिया जिसका नाम अश्विन बंधु है। और अभी आज के श्लोक है जो कहते अष्ट में अंतर आयाते सावरणी भवितामनु निर्मोक विरजस्कध्या सावरणी तनया निप। हे राजन, आठवें मनु की कालावधि आने पर सावरणी मनु बनेगा, निमोक निरजस्क इत्यादि उनके पुत्र होंगे। हरे कृष्णा। तो यहां पर श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी सुंदर भगवान के भक्त हुए जो मनु महाराज, इस मनु महाराज के चरित्र का गान कर रहे हैं। वास्तव में हमारा सौभाग्य है भगवान श्री राधा राजबिहारी जी और श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज गौर निताय के सानिध्य में चरणों में बैठकर जो भगवान ने जो लीला किया है, भगवान ने जो भक्त के साथ जो लीला किया है, इस लीला का गान करने को मिलता है, सुनने के लिए सुनने को मिलता है। ये हमारा सौभाग्य है क्योंकि भगवान की इसी पवित्र लीलाओं को सुनकर हम पवित्र होते हैं, हमारा जो कलमस है वो कलमस दूर होते हैं। और भगवान की कथा सुनने से स्वयं भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं, बैठ जाता है भगवान। इसलिए तो सुतगौ स्वामी नेमिसाणिया में कहते हैं कि भक्ति हृदय स्पुंस शोक मोह भयापहा। 88,000 ऋषियों को बतलाते हैं, कहते हैं भगवान जब हृदय में आ जाते हैं तो क्या होते हैं, शोक मोह भय, भय मतलब डर जो हमारा निकल जाते हैं। इस संसार में सब दुखी है, शोक मतलब दुखी लोग हैं। जो भगवान की कथा सुनेंगे तो क्या होगा, हमारा जो दुख है, जो त्रिताप है वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। और प्रभुपाद जी ने वेद व्यास जी के जो वाक्य है इस वाक्य को सार्थक किए हैं। प्रभुपाद ने क्या किया है, पूरे जो हमारे इस कान के जो केंद्र है यहां पर सुबह में प्रातः काल में हर रोज नित्यम भागवत होते हैं। ये आचार्य है जो शास्त्र में जो किए हैं वो हम सबको सिखाते हैं। तो ऐसे भागवत सुनने से क्या होते हैं, हमारा शोक है दूर होते हैं, मोह है भय है मृत्यु का डर भी है वो भी भागवत सुनने से चला जाता है। जैसे आपने सुने हैं परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए सुखदेव गोस्वामी को, हे सुखदेव गोस्वामी आप बताइए जो मरणा अवस्था में जो व्यक्ति पड़े होते हैं उसको क्या करना चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूरा भागवत सुनाया है। तो परीक्षित महाराज ने भागवत सुनकर क्या किया, मृत्यु को भी जीत लिया, मृत्यु का डर नहीं लगा। जो व्यक्ति हर रोज भागवत सुनते हैं मृत्यु का इसको कभी भी डर नहीं लगता। इसलिए हमको हर रोज भागवत सुनना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं प्रभु बोले शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन प्रभु प्राप्ति है परम साधन। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहे, प्रभु कहे, क्या कहते हैं, श्रवण कीर्तन, हरोज श्रवण कीर्तन करना चाहे प्रभु प्राप्ति, प्रभु अर्थात भगवान को प्राप्त करने का यही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए हम सबको हरोज भगवान के नाम के कीर्तन और भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो यहां पर सुंदर भागवत के आठवें स्कंद की तेरहवें अध्याय की सुंदर लीला यहाँ पर चालू हो रहा है। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी मनु महाराज के वर्णन कर रहे हैं। इस भागवत में 10 वस्तु है, 10 वस्तु का निरूपण हुआ है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण उतय मन मंतरे ईशानु कथा निर्धो मुक्ति आश्रय। भागवत में 10 वस्तु का जो निरूपण हुआ है, यहाँ 8वें स्कंद में यहाँ पर जो वर्णन हो रहा है मनमंतर ईशानु कथा, जो मनमंतर जो मनु महाराज के काल में जो भगवान ने जो लीला किया हुआ है, इसे लीलाओं का अष्टम अध्याय मतलब अष्टम स्कंद में और निरूपण हुआ है। जैसे 6वें स्कंद में वित्रासुर इत्यादि जो भागवत में जो कथा है, ये भक्ति में पोषण होते हैं, सर्जन विसर्जन ऐसे कहते हैं, अत्र सर्ग विसर्ग जो 10 वस्तु का निरूपण जो हुआ है इस भागवत में, इस भागवत में अष्टम स्कंद में मनमंत्र का वर्णन हुए है। कौन सा मनु में भगवान अवतार लिए यहां पर वर्णन हो रहा है। मनु महाराज के बारे में कई कथा मिलती है, एक मनु नहीं है, 14 मनु है। और मनु महाराज जो 14 मनु है वो कहते हैं 14 मनु मिलकर इस भूमंडल में जो राज करते हैं, कितना के 1000 शतुर्युग वो 14 मनु राज करते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी का एक कल्प, ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनु आते हैं और एक मनु 71 चतुर्युग राज करते हैं। प्रभुपाद जी भी परपोट में लिख रहे हैं। ऐसे मनमंत्र में अर्थात मनु महाराज जो 71 युग में जो राज्य करते हैं, इस 71 युग में भगवान प्रत्येक मनु में, जो प्रत्येक मनु होते हैं तब भगवान अवतार लेते हैं, इसे मनमंत्र अवतार कहते हैं। तो ऐसे यहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं पहला श्लोक में, मनु विवस्वतः पुत्र श्राद्ध देव इति सुतः सप्तमो वर्तमानो यस्त दपत्यादि मैं सुनु हूं। सुनो अर्थात आप सुनिए, परीक्षित महाराज को सावधान कर रहे सुनिए। और यहां पर सुनो शब्द हम सबको भी लागू होते हैं, हम भी सुनिए ऐसा। तो 7वें मनु की यहां पर बात हो रहा है। पहला मनु वे स्वयंभू मनु, जो तृतीय स्कंद में जो कथा मिलती है, स्वयंभू मनु जो भगवान के मानस पुत्र है, और मनु महाराज और शत्रुपा से मिथुनी सृष्टि का निरूपण हुआ। और बाद में दूसरा मनु है स्वारोचित मनु जो अग्निदेव के पुत्र है। तीसरे मनु है उत्तम मनु जो प्रियव्रत के पुत्र है। चौथे मनु हुए तामस मनु जो उत्तम के सगे भाई है। पांचवे मनु हुए रेवत मनु जो तामस मनु के सगे भाई है। और छठे मनु हुए साक्षुत मनु जो सक्षुत के पुत्र है। और जो 7वें मनु जो यहां पर जो अभी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, इस श्लोक में 8वें मनु का वर्णन है। इससे पहले जो 11 से पहले जो 10 श्लोक है, इसमें सुखदेव गोस्वामी जो 7वें मनु है, 7वें मनु की बात रखते हैं। तो पहला श्लोक में कहते हैं मनु विवस्वत पुत्र, विवस्वत सूर्य देव और विवस्वत के पुत्र हुए श्राद्ध देव, और इसका दूसरा नाम है वेवस्वत। विवस्वत का पुत्र हुआ वेवस्वत और दूसरा नाम इसका श्राद्ध देव मनु है। और श्राद्ध देव मनु के राज्य में 7 सप्त ऋषि हुए जिसका नाम है कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज। ये सप्त ऋषि हुए जो अभी है। और इंद्र है जिसका नाम है पुरंदर, अभी का जो स्वर्ग में जो राजा है इंद्र, इंद्र वो पदवी है, पोस्ट, जैसे वड़ा प्रधान, वड़ा प्रधान का नाम दूसरा होते हैं, इसी तरह इंद्र है, इंद्र का नाम है अभी पुरंदर, और देवता हुए अदिति के, अदिति के जो पुत्र है, बार पुत्र हो देवता है, और इस इंद्र के और इस मनु के काल में भगवान स्वयं वामन देव प्रकट हुए, जो यहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अभी जो बात कर रहे हैं, अभी सुंदर इस मनु के जो पुत्र हुए, सब पुत्र की बात रख रहे हैं। इश्वाकु कह रहे हैं इस मनु महाराज को 10 पुत्र हुए। इश्वाकु न भगत सेवा दृश्य सर्याति एस च, 10 पुत्र का नाम है जिसमें इश्वाकु नभग दृश्य सर्याति नरसंत नाभाग दृष्ट तरुष और पिसद्र, ये 10 पुत्र हुए श्राद्ध मनु के, जो श्राद्ध देव मनु है उसको 10 पुत्र हुए। थोड़ा मनमंत्र सुनना थोड़ा है दीप होगा, लेकिन जो वास्तव में अभी जो इस इश्वाकु इत्यादि जो वंशज का वर्णन यहां पर कर रहे हैं, जो सूर्य कुल की जो सूर्य वंश की परंपरा का वर्णन कर रहे हैं, वास्तव में ये सुनने से हम पवित्र होते हैं। सुखदेव गोस्वामी आशीष देते हैं, कहते हैं इस पवित्र वंशावली को जो सुनते हैं और इसका हृदय निर्मल पवित्र होते हैं, भगवान इसके हृदय में विराजते हैं। ऐसे नाम सुनने से भी ईश्वर को पवित्र राजा हुए हैं, जो श्राद्ध देव मनु के जो 10 पुत्र है, जो सबसे बड़ा पुत्र है ईश्वर को, बहुत पवित्र है। सुंदर कथा है ईश्वर को महाराज की, इसलिए कहा गया है इश्वाकु महाराज इतने सुंदर राज्य चलाते थे। तमे इश्वाकुम अयोध्यायम राजनाम वेद्य पूर्वकम, वाल्मीकि रामायण में बताया गया है अयोध्या के सबसे पहले राजा हुए इश्वाकु। अयोध्या जो नगरी है, भगवान श्री राम इसी वंश में प्रकट हुए हैं, तो सबसे पहले अयोध्या के जो राजा है वो कौन हुए है, तमिक इश्वाकु। इसे कौन कह रहे हैं, वाल्मीकि जी कह रहे हैं। ऐसे इश्वाकु जी बहुत पवित्र है, और अपनी प्रजा को अपने जो बेटे होते हैं इसी तरह पालन किए हैं। जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और परीक्षित महाराज के बारे में सब ऋषिगण सब संबोधन कर रहे थे, एक ऐसे हो गए राम जैसे राज्य करेंगे, ऐसे सब अलग अलग सब ऋषि मुनि ने सुंदर सुंदर बताया हुआ है परीक्षित के बारे में। यहां पर सुदगव स्वामी बताते हैं, कहते हैं कि पार्थ प्रजा पिता साक्षात इश्वाकु एव मानव, प्रथम स्कंद में 12वें अध्याय में बताते हुए सुदगव स्वामी कहते हैं धौम्य इत्यादि ब्राह्मण सब ऋषि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, जो आपका जो पौत्र है ना, वो पौत्र कैसा होगा, तो कहते हैं प्रजापति साक्षात इश्वाकु इव मानव, जो इश्वाकु जो राजा हो गए, वो इश्वाकु ने जो प्रजापति अर्थात प्रजाओं के पति कहा गया है राजा, प्रजाओं का सही ढंग से जो पालन करते हैं, राजाओं का दूसरा संबोधन शब्द है प्रजापति, प्रजाओं का जो पालन करते हैं इसलिए इसको प्रजापति कहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का भी प्रजापति एक नाम है, दक्ष का भी प्रजापति नाम है, इसी तरह यहां पर इश्वाकु को भी क्या कहे, प्रजापति, प्रजाओं का सही ढंग से पालन करते थे। इश्वाकु राजा युधिष्ठिर महाराज राजा सब जो राजा के काल में जो भी बीमार होते थे, कोई व्याधि आती थी, तो राजाओं को कहते थे आपका कुछ आचरण गड़बड़ है, आपका आचरण में कुछ कमी है, इसलिए हम बीमार होते हैं। आप सोचो, राजा को दोष दिया जाता था। जब राजा कुछ अपनी प्रजा का सही तरह पालन न कर पाए तो इसको प्रजापति कहना असंभव है। तो यहां पर युधिष्ठिर महाराज को सब ब्राह्मण बताते हैं, कहते हैं आपका जो पौत्र है वो कैसा प्रजा का पालन करेगा, इश्वाकु जैसे। और भगवान स्वयं द्वारका जी कृष्ण तो याद करते हैं ईश्वर को गीता में, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्यम विवस्वान मनवे प्राव मनो ईश्वा कुबे अक्रबीत। यहां पर ईश्वर को भगवान स्वयं याद करते हैं, मतलब ईश्वर को कोई साधारण नहीं है, पवित्र राजा है। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी श्राद्धदेव मनु के प्रथम पुत्र का नाम लेके कह रहे हैं, और इश्वाकु नाम के पुत्र हुए। और दूसरा पुत्र हुए सरयाति, यहां पर नाम दिया है इश्वाकु और सरयाति। सरयाति की बहुत सुंदर भागवत में नवस्कंद में कथा मिलती है। पवित्र राजा हो गए श्राद्धदेव के पुत्र सरयाति। जो सरयाति के बारे में कथा मिलती है, सरयाति महाराज अपने प्रजाओं को अपने जो सैन्य को लेकर एक बार जंगल में गए। जंगल में एक चवन ऋषि का आश्रम था, आश्रम में गए। दोपहर तक यहां पर सब आश्रम के जो सुंदर जो बगीचा जैसे थे तो सब विहार कर रहे थे। और सरयाति की एक पुत्री था जिसका नाम था सुकुमारी, साथ में गई, साथ में पिताजी के साथ वन में गई थी। तो ऐसे वो जो सुकुमारी देख रही थी, तो यहां पर एक माटी का ढेर देखा। उसे ढेर में क्या हुआ था, सुंदर जो दो आंख होते ना, जैसे अग्नि होते हैं ना, अग्नि का जला हुआ जो कोयला होता है ना, जैसे तेज करते हैं, इसी तरह इस ढेर में दो कोयले के तरह सिंगारी तरह चमक रहे थे कुछ। तो इस लड़की ने देखा क्या होगा पता नहीं, तो जो बबूल होते हैं, बबूल में जो कांटे होते हैं ना, इस कांटा लेके इसमें घुसा दिया। तो थोड़ी देर हुआ तो देखा जैसा इसमें कांटा लगा तो यहां से खून बाहर निकला। तो खून बाहर निकला और फिर ऐसा हुआ, सरयाति राजा और राजा के जो सैन्य सब आए थे सबको पेट में दर्द होने लगा। भागवत में लिखे सबका मल और मूत्र सब दोनों बंद हो गया और सबको पेट में दर्द होने लगा। तो फिर राजा ने सब सैनिकों को पूछे, आपने कुछ यहां पर आश्रम में कुछ ऐसा तो किया नहीं है ना। तब वो अपनी जो पुत्री जो बेटी थी कन्या, वो बोली कि हाँ पिताजी, यहां पर एक माटी का जो ढेर है, इस ढेर में मैं एक बबूल का जो कांटे होते हैं और यहां पर डाले थे, यहां पर खून निकले थे। तो फिर सरयाति राजा यहां पर आए और देखे तो वो तो जान गए यहां तो कौन है तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि जो चवन मुनि थे, जो मुनि थे वो मुनि लोगों को से, मतलब जो मनुष्य से थोड़ा दूर रह के भजन करने चाहते थे, इसलिए किसी को पता न चले, इसलिए माटी का बड़ा ढेर अपने तपस्या से बल से बड़ा ढेर कर दिया। जैसे वाल्मीकि का भी नाम ऐसा ही है, वाल्मीकि ने भी बड़ा ढेर हो गया तपस्या में, इसी तरह यहां पर चवन ऋषि का भी ऐसा ही ढेर मट्टी का हो गया था। फिर सरयाति राजा प्रार्थना करने लगे, हे महाराज हमारी भूल हो गई। तब ऋषि इसमें से प्रकट हुए और कहने लगे, आपने अपराध तो हुआ है, आपकी जो कन्या है इसने अपराध किया है, जरूर दंड मिलेंगे। तुरंत सरयाति राजा ऋषि के चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे। तब सरयाति राजा को कहने लगे, इस अपराध का समन हो सकता है, आपकी जो एक कन्या है ना, इस कन्या का विवाह मेरे साथ कराओ, तब अपराध नहीं लगेंगे। अभी कहां ऋषि बड़े और कहां 20 साल की कन्या। लेकिन आगे बहुत सुंदर महाभारत में इस कथा का निरूपण हुआ है। फिर ऋषि चवन भी यौवन हो जाते हैं और विवाह होते हैं, और ऐसे सरयाति राजा की कथा मिलती है। और इस वंश में सरयाति राजा को 3 पुत्र हुए, जिसका नाम है उतानबरहि, भूरिश्रवा और अनर्थ। तो एक बार की बात है, सरयाति राजा तीनों पुत्र को, तीनों बेटे को बुलाए और तीनों पुत्र को कहने लगे, हे मेरे प्रिय पुत्रों, इस भूमंडल का राजा मैं हूं, सरयाती राजा कहते हैं। और अभी मैं क्या करना चाहता हूं, एक मैं तीनों को राज देना चाहता हूं, तीनों जो दिशा है तीनों दिशा में एक एक राजा में आपको घोषित करना चाहता हूं। तब अनर्त नाम के जो मजले पुत्र थे इस पुत्र को कहे, आप पश्चिम दिशा में जो पश्चिम दिशा है इस दिशा का आप राज्य करें। तीनों को राज्य दे दिया। और फिर सरयाती राजा ने कहे, देखो ये मेरा राज्य है, मैं आपको दे रहा हूं, जोर से कहे, मेरा राज्य है, आप तीनों को मैं दे रहा हूं, इसलिए सावधानी पूर्वक आपका आप सबको इसको रखे करना है, मतलब ध्यान रखना है, संभालना है। तब सरयाती के जो मजले पुत्र थे जो अनर्थ और हंसने लगे, और फिर हंसने लगा तो राजा बिगड़ गए, बोले क्यों हंस रहे। तब वो बोलने लगे और कहने लगे, हे महाराज, हे पिताश्री, आप बोल रहे मेरा राज्य है इसलिए मुझे हंसी आ गया। इस संसार में हमारा कुछ है ही नहीं, ये तो भगवान कृष्ण का है, और आपने कह दिया ये मेरा राज्य है इसलिए मुझे हंसी आ गया। तब राजा बहुत क्रोधायमान हो गए सरयाती राजा, और सरयाती राजा कहने लगे, जहां पर मेरा भूमि न हो, जहां पर मेरा चक्रवर्ती सम्राट में हूं, जहां पर मेरा राज्य न हो, यहां पर आप चले जाओ। तब तो अनर्थ सोचने लगा, सब भूमंडल के राजा तो मेरे पिताजी, अभी मैं कहां जाऊं, लेकिन पृथ्वी के राजा है, समुद्र के राजा वो नहीं है। तब पश्चिम दिशा में मतलब गुजरात में जो द्वारका है, द्वारका पश्चिम में बोला गया है, तो यहां पर गए और समुद्र में 10,000 साल तक अनर्थ ने तपस्या किया भगवान विष्णु की। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और अनर्थ कहने लगे, प्रभु मैं अभी कहां पर रहूं, क्योंकि मेरे पिताजी ने मना किया इस पृथ्वी पर रहने के लिए। तब भगवान ने अपने वैकुंठ जो द्वारका है, इस द्वारका के 100 योजन भूमि अनर्थ को दिया। देखो यहां पर सुंदर एक गर्ग संहिता में कथा मिलती है, जो वैकुंठ में जो द्वारका है, इस द्वारका को भगवान ने इस धराधर पर स्थापित किया, और इसीलिए इस जगह का नाम है अनर्थ देश। द्वारका की जो जगह है, इस जगह का नाम भी है अनर्थ देश। अनर्थ देश इसलिए हुआ, अनर्थ राजा ने यहां पर तपस्या किया और अनर्थ राजा के नाम से इस भूमि का नाम हुआ अनर्थ देश। ऐसी सुंदर कथा गर्ग संहिता में मिलते हैं। तो ऐसे पवित्र वंशावली को हम सुनकर भगवान के तरफ जा सकते हैं। जैसे अनर्थ बहुत सुंदर तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हो गए। आप देखो फिर इसमें पवित्र कुकु भी राजा हुए, कुकुर्द भी, और फिर इसने कुशकशला नाम का राज्य स्थापित किया, फिर रेवत हुए, रेवत का रेवत इसकी जो बेटी हुई जिसका विवाह बलराम जी के साथ हुआ, सब बहुत सुंदर कथा मिलती है, यही वंश की कथा है। तो यहां पर श्राद्ध मनु के, सारदेव मनु के एक इश्वाकु पुत्र और दूसरे सरयाती, और तीसरा पुत्र है पिसद्रह। बहुत सुंदर कथा नवम स्कंद में इसकी मिलती है। वास्तव में जो मैं यहां पर आपको बता रहा था, जो मनु महाराज कहने लगे ओ मेरा है राज्य मेरा है, वास्तव में यहां पर हमारा कुछ है, ये माया है। हम जो कहते हैं ना, वो मेरा है, वो बेटा मेरा है, वो लड़का है, जो भी कहते हैं, एक व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति कितने के सगे होते हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी का भतीजा होता है, वो कहते हैं मेरा भतीजा, जो बोलते हैं ना, वो कहते मेरा पति है, और कोई कहते हैं मेरा बेटा है, जैसे माँ होते हैं, क्या बोले मेरा बेटा है, पति पत्नी बोले कि मेरा पति है, पुत्र बोले मेरा पिता है, एक ही व्यक्ति वो सब मेरा कहते हैं। इसलिए सुंदर ब्रज के कवि कहते हैं, इस संसार में सब मोर कहते, मतलब मेरा कहते, मोर सब कहे बंधु मचावत चोर। बंधु मतलब जो हमारे सगे वाले हैं, सब कहते हैं मेरा 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 है। वास्तव में मोर पंखन वाले कब कहोगे मोर है, मोर पंखन वाले
हे राश बिहारी जी आप कब कहेंगे मोर, अर्थात हे राश बिहारी जी आप मुझे कब कहेंगे आप मेरा है। वास्तव में यहां पर मेरा कुछ है ये सब माया है, इसलिए जीव माया के चुंगुल में आकर सब भूल जाता है। मेरा मेरा करने में से हम सब भूल जाते हैं भगवान का भजन करने का, और वास्तविक हमारा मूल स्वरूप है भगवान के दास है। इसलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण नित्य दास जीव तार भूली गेला ए माता माया तार गले बांधीला। कृष्ण गोस्वामी कहते हैं वो कहते हैं कृष्ण नित्य भगवान के दास है, जो जीव है वो क्या है कृष्ण के नित्य दास है, लेकिन हम भूल गए कृष्ण हमारे स्वामी है लेकिन हम स्वामी बन गए। इसीलिए माया क्या करती है बंधन में हमको फंसाती है, बांध देती है, जगड़ देती है, कृष्ण के तरफ जाने नहीं देती है। लेकिन माया से छूटने का भी सुंदर उपाय कृष्ण कविराज गोस्वामी बताते हैं। वो कहते हैं के ताते कृष्ण भजे करे गुरु रा सेवाना माया जाल सुटे पाय कृष्ण रा शरण। बताते हुए कहते हैं ताते कृष्ण हम कृष्ण का भजन करेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण की कथा गाएंगे, तब क्या होगा माया छूट जाएंगी। इसलिए मेरा मेरापन सब छोड़ देना है। ऐसे वंशावली एक राजा का पुत्र हुआ प्रसिद्ध, प्रसिद्ध करके बारे में नवम स्कंद में कथा मिलती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रसिद्धस्तु मनो पुत्र गोपालो गरुणाकृता पालाया मास गायंतो रात्रां विरासन व्रता। जो प्रसिद्ध राजा क्षत्रिय हो गए, इतना पवित्र राजा हो गए, कहते हैं गोपाल गुरु नाम कृतः, कहते गुरु की आज्ञा में गाय की रक्षा करते थे। पिसद्र जो श्राद्ध देवी के जो पुत्र है वो क्या करते थे गाय की रक्षा करते थे। गोपाल यहां पर इसका नाम क्या नहीं गोपाल मतलब गो मतलब गाय, गाय का पालन करते थे पिसद्र राजा। और कैसे पालन करते वीरासनम, वीरासन पता है वीरासन आसन होता है ना कई प्रकार के, इसमें एक आसन है वीरासन, जैसे हमारे हनुमान जी बैठे हैं ना, जैसे एक पैर ऐसा होता है गदा यहाँ पर रखते और बैठे होते हैं ना एक पैर नीचे रखकर, इसको वीरासन कहते हैं। मतलब जागृत कभी वो सोते नहीं है, हनुमान जी हमेशा भगवान की सेवा में जागृत है, कभी भी थोड़ा भी वो नींद नहीं आता है, तदरा भी नहीं आती, इतना जागृत रहते हैं इसको वीरासन में। इसी तरह पिसद्र राजा गाय की सेवा में वीरासन रख के पर बैठते थे, इतनी मतलब सेवा करने में तत्पर थे। गुरु की आज्ञा यहां पर लिखा है गोपाल गुरुणा कृत, गुरु अर्थात वशिष्ठ जी की आज्ञा से वो सेवा करते थे। वशिष्ठ जी ने कहे थे आप गाय की सेवा करिए, गाय की सेवा करते थे। वास्तव में गाय की सेवा करनी चाहिए। पद्म पुराण में एक सुंदर श्लोक मिलते हैं, पद्म पुराण श्लोक में कहते हैं चार वस्तु जो हम सेवा करते हैं डायरेक्ट भगवान की सेवा होती है। कहते हैं इसमें उक्तम भागवतम नित्यम हरिचिंतनम तुलसी पोषणम क्षेव घेनुनाम समर्चनम। बताते हुए कहते हैं जो भागवत का श्रवण करते हैं रोज और फिर क्या कहते हैं हरिनाम चिंतन करते हैं, तुलसी की सेवा करते हैं और धेनुनाम समर्चनम जो गाय की सेवा करते हैं वो डायरेक्ट भगवान की सेवा हो गया। पद्म पुराण में श्लोक मिलते हैं उक्तम भागवतम नित्यम हरिचिंतनम तुलसी पोषणम सेवा धेनुनाम समर्चनम। ये श्रद्धा से सेवा करना चाहिए। देखो प्रभुपाद जी कृपा से यहां पर सब कुछ होता है, यहां पर भागवत होता है, हरिनाम होता है, तुलसी की सेवा होता है, गाय की भी सेवा होता है। प्रधान अंग है, जैसे चैतन्य महाप्रभु जैसे 64 अंग में 5 अंग मुख्य बताया है ना, साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास अर्च विग्रह श्रद्धाय सेवन। श्रद्धा से देखो यहाँ पर जो शब्द रखा हुआ है ना, बहुत सुंदर शब्द रखा हुआ है, श्रद्धा से होना चाहिए। जो भी हम कार्य सेवा करते हैं, सेवा कैसे करना है, श्रद्धा से होना चाहिए। चाहे हम भागवत पढ़े या हरिनाम चिंतन करे, हरिनाम का उच्चारण करे, तुलसी की सेवा करे, गाय की सेवा करे, या साधुओं का संग करे, या मथुरावास करे, श्रद्धा से चैतन्य जैसे हम करते तो है, धाम में वृंदावन जाते हैं, गाय की सेवा भी कर लेते हैं, हरिनाम भी लेते, श्रद्धा कितनी है? श्रद्धा की कमी है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहना पड़ा, श्रद्धाय सेवन, श्रद्धा से सेवन करना चाहिए। तो इसी तरह हम श्रद्धा से जो भगवान ने चैतन्य महाप्रभु जो दिए हुए है, जो अंग है, तो करेंगे नक्यम भगवान को प्राप्त है। देखो पहले क्या बताए, साधु संघ, नाम संघ की जो बता रहे, साधु संघ, साधुओं का संग प्राप्त करना दुर्लभ है संसार में, और हम सबको तो ऐसे ही साधुओं का संग मिलते हैं। देखो वित्र भागवत वित्रासुर कहते हैं, भगवान के पास मांगते हैं, जब अपना हाथ कट गया था, पैर कट, केवल प्रार्थना करने के लिए वासा मतलब वाणी की अपने पास थी, और वाणी से वो बोल रहे थे, सुंदर प्रार्थना किया है वित्रासुर ने, चार श्लोक बोले हुए हैं। इसमें पहला श्लोक में वित्रासुर कहते हैं, अहम हरे तव पादे कमोला दासानुदासो भवितास्मि भूया मन स्मरेता सुपते गिनन्ते गिनन्ते वा कर्म करो तु काया। वो कह रहे हैं, हे भगवान, आपके मूल मतलब आपके जो चरण है, अहम मरे तो पादे के मूल, आपके चरण के मूल मतलब जो पाद आश्रय लिया हुआ है, ऐसे दासानुदास भवितास्मि भूया, जो आपके दास होते हैं, ऐसे दासों का संग मुझे दीजिए। क्या करूंगा, कोई पूछे, वित्रासुर को पूछ ले, आप भगवान के दासों के साथ में रहकर क्या करना है, तो कहे मन स्मरेता सुपते गृणान्ते, मेरा मन क्या होगा, भगवान की लीला का स्मरण करेगा, और गृणंति वाक कर्म करो तु काया, एक गृणत मेरी वाणी है, वो भगवान के गुणगान में लग जाएंगी। ऐसे वित्रासुर मांग रहे हैं, ऐसे भगवान को हर रोज हमको भी प्रार्थना करना चाहिए, हे रास बिहारी जी, हे सीताराम जी, गौर निताय, मेरा वाणी आपकी सेवा में लगे, एक काया इस पूरा शरीर आपके सेवा में लग जाए, सवे मुन जैसे कहते हैं कृष्ण पदार विंदियो वंशा से वैंकुट गुणानु, जो वर्णन कर रहे अमरीश महाराज, सर हमारा शरीर भी भगवान की सेवा में लग जाए, वाणी है, कर है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। तो यहाँ पर वीर आसन में कौन बैठे थे, और पिसद्र राजा सर जो श्राद्ध देव के पुत्र, और या एक दिन ऐसा हुआ, पूरा रात अमावस्या थी, कुछ दिख नहीं रहा था, तो गौशाला में एक बाघ आ गया, बाघ आ गया, वीरासन में बैठे थे लेकिन देख नहीं रहा था, अंधार था, तो आया और गाय को पकड़ा, गाय को पकड़ा तो गाय चिल्लाने लगी, जोर जोर से आवाज करने लगी, इसलिए राजा को पता चल गया कि बाघ आया है, लगता है कोई हिंसक प्राणी आया है, तो तुरंत गए और तलवार से मार दिया, और फिर अपने आप अपनी जगह पर चला गया। सुबह हुआ, गौशाला में जब देखने गए तो क्या हुआ था, गाय का सर कट गया था, गाय का सर कट गया था, अंधार था, कुछ दिखा नहीं था, दिख नहीं रहा था, लेकिन वाघ रहा था, वो पक्का था, वाघ को जब तलवार थोड़ी लग गई तो इसका जो कान था वो कान टूट गया था, कर्ण टूट गया था, कान किसका, वाघ का, तो पता चला वाघ तो आया ही था, वो पक्का है, लेकिन वाघ को मारने के चक्कर में कौन मर गए, गाय मर गई, और बाद में गए तुरंत गुरु के पास और गुरु को पूरी बात बता दिया, लेकिन वशिष्ठ जी प्रसन्न नहीं हुए। देखो भूल से हुआ था, अनजान में हुआ था, गाय की रक्षा करने के लिए ही हुआ था, लेकिन तो भी वशिष्ठ जी ने माफ नहीं किए और कह दिए आप शूद्र कुल में जन्म लेना पड़ेगा, शूद्र बनना पड़ेगा, जाओ यहां से निकलो, गौशाला की रक्षा आपको नहीं करना है। तब विशुद्ध राजा जंगल में गए, जंगल में भगवान की तपस्या किया है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उग्र तपस्या, मतलब जो सात्विक तपस्या जो कहते हैं, इसी तरह घोर तपस्या किया और भगवान प्रसन्न हो गए। और बाद में भगवान को पास जाके क्षमा याचना करते हैं, भगवान अपना ध्यान इसको प्रदान करते हैं। देखो यहां पर एक सुंदर बात, एक पॉइंट है, गुरुदेव ने क्या किया, आपको शूद्र बनना पड़ेगा, लेकिन पिशत्र राजा ने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जंगल में जाकर भगवान का भजन किया, भक्ति किया, इसीलिए वो भगवान के धाम को प्राप्त कर दिए। और भगवान के धाम को जो प्राप्त करते हैं, इसको फिर दूसरी बार जन्म लेना नहीं पड़ते। तो गुरु का वाक्य यहां पर तो वही हो गया ना, क्योंकि भक्ति के सामने श्राप किसी को लगता नहीं है। बात यह, श्राप दे दिया तो शूद्र बन जाओ, लेकिन भक्ति किया तो श्राप वरदान रूप हो गया, समन हो गया। इसलिए यहां पर सुंदर कथा मिलती है। और आज के जो श्लोक में थोड़ा मैं दो मिनट में बताता हूं, तो कहते आठवें मनु की बात कर रहे हैं सुखदेव। प्रभुपाद जी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी महान योगी थे और कई ऋषि के पास सुने थे आठवें मनु कौन आने वाले हैं। तो कहते आठवें मनु सावरणी मनु आएंगे, जो सूर्य देव की पत्नी छाया से उत्पन्न हुए हैं, और इसके काल में इंद्र होगा प्रहलाद जी के पौत्र बलि महाराज। अभी का जो इंद्र कौन आने वाले हैं, पुरंदर के बाद स्वर्ग में राजा कौन बनेंगे, बलि महाराज। और बाद में सप्त ऋषि तब होंगे, कहते गावल, दीप्तमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृष्णद्वैपायन व्यास, ये सब सप्त ऋषि होंगे। बाद में देवता होंगे सुतिया या वीरद इत्यादि सब देवता होंगे। और इस काल में भगवान विभु अर्थात भगवान अवतार, जो वामन अवतार लिया है ना, वामन अवतार ही रहेंगे, क्योंकि बलि को भगवान ने कहे हुए है आपके राज्य काल में मैं आपका रक्षा करूंगा। इसलिए आने वाले भी मनमंत्र में बलि महाराज की रक्षा कौन करेंगे, भगवान वामन देव करेंगे। तो इसी तरह यहां पर भागवत के जो आठ के श्लोक, आज के जो श्लोक है, यहां पर मैं थोड़ा चर्चा किया। वास्तव में कुछ ऐसा तो बोलने नहीं आता है, लेकिन मुझे हमारे आदरणीय राधिका कने प्रभु कहे कुछ अपाए है, तो ऐसा तो सब जगह पर कथा करते ही है, तो बोले ठीक है। तो जितना मेरे मति में गुरु और भगवान की कृपा से बुद्धि में आया वो आपके सामने प्रस्तुत किया, तो इसमें कुछ गलती हो तो आप सब क्षमा करिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण खे राधा राज बिहारी भगवान खे वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बृंद की जय।